लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे संकट में फंसे परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि टूटे हुए परिवार क्षमा के माध्यम से अपने घावों का उपचार खोज सकें और अपने बीच व्याप्त मतभेदों के बावजूद एक दूसरे के उपहारों को फिर से खोजने में सक्षम बन सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम ब्राजील में अमेरिकी मिशनरी सिस्टर दोरोथी स्टाइन की कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं। ब्राजील में सिस्टर दोरोथी स्टाइन की हत्या के 20 साल बाद भी उनकी विरासत उन छोटे किसानों के दिलों में बसी हुई है, जो अमेजन व शावन में जमीन पर खेती का जीवन यापन करते हैं, जिनके अधिकारों के लिए सिस्टर दोरोथी ने अपना जीवन दे दिया। सिस्टर दोरोथी स्टाइन वनों की कटाई के खिलाफ और अमेजन क्षेत्र में छोटे किसानों और मजदूरों के अधिकारों के लिए दशकों तक लड़ाई लड़ी। इसका नतीजा यह हुआ कि धम्मबहन स्वाद के टकराव की आग में फंस गए और उन्हें बार बार धमकियां दी जाने लगी। 12 फरवरी 2005 को जब एक हत्यारे ने उनकी हत्या की, तब वे 73 साल की थीं और उनके हाथ में एक बाइबल था। सिस्टर जेन ट्यूएन ने सिस्टर दोरोथी के साथ अमेजन क्षेत्र में कई सालों तक काम किया है और अब 84 साल की हैं। वे कहती हैं, सिस्टर दोरोथी की थैली हमेशा बीजों से भरी रहती थी। आजकल मैं जहाँ भी जाती हूँ, लोगों को यह कहते हुए सुनती हूँ, मुझे यह कोको का पौधा सिस्टर दोरोथी से मिला है, यह सिस्टर दोरोथी का खजूर है। गरीबों ने उन्हें अपने दिलों में संजो कर रखा है। लोगों के प्रति प्यार के अलावा प्रकृति के प्रति प्यार भी सिस्टर दोरोथी के जीवन में हमेशा बना रहा। सिस्टर कत्या कहती हैं, प्रकृति की रक्षा करना और सभी प्राणियों के साथ जुड़ना उनकी आध्यात्मिकता का मुख्य केंद्र था। सिस्टर दोरोथी जब 1966 में ब्राजील पहुंची, तब वे 35 साल की थीं। वे एक मिशनरी बनकर अमेरिका से आई थीं, ताकि मनुष्यों और प्रकृति की सेवा कर सकें। उन्होंने सबसे पहले अमेजन के बाहरी क्षेत्र में स्थित एक छोटे शहर में काम किया। सिस्टर कत्या बतलाती हैं, उन्होंने उन किसानों के लिए ग्रामीण इलाकों को तैयार किया जिनके पास जमीन नहीं थी। जब सैन्य तानाशाही ने जमीन के वादे के साथ लाखों लोगों को वर्षावन के दूषित क्षेत्रों में खींचा, तो सिस्टर दोरोथी ने प्रवासी मजदूरों का पीछा करने का फैसला किया। यह पलायन 10 सालों तक चला और 1982 में रियो जिंगू के निकट एक छोटी बस्ती अनापो का रूप ले लिया। लोग जो पहले किसान थे, सरकार ने एक बड़ी परियोजना में काम करने के बाद छोड़ दिया, तो वे अब वहीं रहने लगे। सिस्टर दोरोथी पहले एक अत्यंत गरीब परिवार में रहीं। सिस्टर ड्यूएन समझाती हैं, यह हमारे धम्मसंघ का कार्यक्रम है कि हम गरीबों के साथ गरीबों के बीच रहें। अपनी धम्म बहनों के साथ मिलकर सिस्टर दोरोथी ने अनापो में एक छोटा मिशन स्टेशन स्थापित किया और लोगों को सरकार से उन चीजों को मांगने में सहायता की जो सरकार ने उनसे वादा किया था, स्कूल, स्वास्थ्य सहायता और खेती के लिए जमीन। जमीन के लिए उनकी मांग अनसुनी कर दी गई, क्योंकि सरकार बड़े जमीन मालिकों को प्राथमिकता देती थी। जरूरत के समय छोटे किसानों ने बंजर जमीन पर खेती करना शुरू किया और झोपड़ियां बनाई, लेकिन बड़े जमीन मालिकों और लकड़हारों ने जमीन पर अपना दावा ठोक दिया। सिस्टर ड्यूएर बतलाती हैं कि वे उन पर गोली चलाते थे और उनके घरों को नष्ट कर देते थे। यहाँ तक कि पुलिस भी हमारे खिलाफ थी, लेकिन लोग डटे रहे और सिस्टर दोरोथी की मदद से उन्होंने अधिकारियों को अपनी संपत्ति के अधिकारों को मान्यता देने के लिए मजबूर किया। सिस्टर दोरोथी से प्रेरित होकर परिवारों ने जैव खेती की और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाया। अवैध वनों की कटाई को रोकने के लिए पूरे क्षेत्र को प्राकृतिक आरक्षित क्षेत्र घोषित करना पड़ा। 2004 में राज्य द्वारा मान्यता प्रदान की गई, जिससे वे बहुत खुश हुए। लेकिन इसके परिणाम स्वरूप स्थिति और बिगड़ गई। सिस्टर ड्वेर बतलाती हैं कि बड़े जमीन मालिकों ने जमीन खोने से इनकार कर दिया। वे हार को स्वीकार नहीं कर सके। उन्होंने सोचा कि सिस्टर दोरोथी की हत्या से लोग भाग जाएंगे। 12 फरवरी 2005 को जब सिस्टर दोरोथी एक नई बस्ती की ओर जा रही थी, तभी कई बंदूकधारियों ने उन्हें रोका और उन पर गोलियां चला दी। एक गवाह के अनुसार सिस्टर दोरोथी ने अपने हथियारों के लिए पर्वत प्रवचन का एक अंश पढ़ा। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। सिस्टर ड्वेर ने बताया कि सिस्टर दोरोथी की मृत्यु सुबह हुई थी, लेकिन पुलिस केवल शाम को उनका शव लेने आई। इस बीच लोग उन्हें घेरे रहे, उन्हें नहीं छोड़ा। वे झाड़ियों में छिपकर बारिश में भींगते हुए पहरा कर रहे थे। दफन के बाद लोगों ने कहा, हम सिस्टर दोरोथी को दफना नहीं रहे हैं, हम उन्हें रोप रहे हैं। 20 साल बाद बीज अंकुरित हो चुका है। अब और कई बस्तियां बस गई हैं, जहां परिवार प्रकृति के साथ सद्भाव में जीते हैं। लेकिन लड़ाई अब भी जारी है। जमीन पर कब्जा करना बहुत कठिन था। घरों में आग लगा दी गई, स्कूलों को नष्ट कर दिया गया, रात में गोलीबारी होती थी। जब ये सब खत्म हुआ तो निवासियों ने अपनी बस्ती का नाम दोरोथी स्टैंग रखने का फैसला किया। वे कहते हैं कि सिस्टर दोरोथी उन्हें उम्मीद देती हैं। सिस्टर ड्वेर कहती हैं कि यहाँ लोग उन्हें कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि उन्होंने उनके लिए अपनी जान दे दी। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ब्राजील में अमेरिकी मिशनरी सिस्टर दोरोथी स्टैंग के बारे सुन रहे थे। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।
सदा शांति दे दे हे शांति दाता, शांति दे दे हे शांति दाता, हमें ज्योति दे दे हे ज्योति दाता, सदा शांति दे दे हे शांति दाता, हमें ज्योति दे दे हे ज्योति दाता, हे ज्योति दाता।
चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका सच की पहचान। लेखक है माइकल होजेस। श्रोताओं, एक तरफ जहां विज्ञान और टेक्नोलॉजी आत्मा भूत प्रेत के अस्तित्व को नकारती है, वहीं ढोंगी बाबा लोगों को मूर्ख बनाकर और भूत प्रेत का भय दिखाकर अच्छी खासी मोटी रकम वसूल लेते हैं। ये अंधविश्वास और अंधश्रद्धा ही है जिससे बीमार और दुखित जनता ऐसे बाबाओं की तरफ आकर्षित होती है, खास तौर पर महिलाएं। दरअसल महिलाएं ज्यादा भावुक होती हैं, जो अपने घर की सुख शांति के लिए बाबाओं के चक्कर में आसानी से आ जाती हैं। आश्चर्य की बात तो ये है कि सिर्फ अनपढ़ लोग ही नहीं बल्कि पढ़े लिखे लोग भी, बड़ी बड़ी हस्तियां भी अंधश्रद्धा में ऐसे ढोंगी बाबाओं के चंगुल में फंस जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर कब तक हम ऐसे बाबाओं पर भरोसा करते रहेंगे? जब तक हम खुद नहीं समझेंगे, ऐसे बाबाओं का कारोबार बढ़ता रहेगा। आज की नाटिका के युवक गिरीश ने बखूबी से दुर्गा देवी के अंधश्रद्धा और भ्रम का पर्दा फाश कर सच की पहचान करने में मदद की। ईश्वर पर विश्वास करें और खुद पर भरोसा रखें, क्योंकि ऊपर वाले की कृपा से अपने बिगड़े काम सिर्फ हम खुद ही संवार सकते हैं और कोई नहीं। तो आइए सुनते हैं माइकल होजेस की लिखी नाटिका सच की पहचान।
आता हूँ भाई। अरे दुर्गा मौसी, आओ आओ। मम्मी, दुर्गा मौसी आई है।
हाँ दुर्गा दीदी, आज सुबह सुबह?
अब हरीश बाबू को घर पर पकड़ना हो तो सुबह सुबह ही तो मिलेंगे ना। कहाँ है हरीश बाबू?
वो तो नहा रहे हैं दुर्गा दीदी, कोई काम है उनसे तो बोलो, मैं उन्हें बता दूंगी।
अरे आशा, मुझे भला उनसे क्या काम पड़ेगा, काम तो वही है पैसों का। तुम लोगों ने जैसे तैसे ब्याज तो चुका दिया है, अब 10,000 मूलधन और ब्याज की 1,000 रुपए की आखिरी किस्त, कुल 11,000 रुपए जो बचे हैं, उसका भुगतान कब हो रहा है?
हाँ कल रात ही को वो मुझसे इस बारे में बात कर रहे थे, परसों तक दे देंगे वो।
और अगर परसों ना दिए तो? याद रखना, पैसा या घर का सामान।
अब जब उन्होंने कहा है तो दे ही देंगे ना, झूठ बोलकर हमें कहाँ जाना है, रहना तो यही है जिंदगी भर।
चलो इतनी समझदार तो हो तुम कम से कम, तो ठीक है परसों ही आती हूँ मैं, बता देना हरीश बाबू को, चलती हूँ मैं।
ठीक है दुर्गा दीदी, मैं उनको बता दूंगी।
मम्मी ये मैं क्या सुन रहा हूँ, कल ही मैं हॉस्टल से घर छुट्टी आया हूँ और आज ये सुबह सुबह दुर्गा मौसी उधारी के लिए सुबह सुबह घर पर?
हाँ बेटा, तू तो जानता ही है कि तेरे पापा क्लर्की करते हैं और एक क्लर्क के पास आज के जमाने में इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने बच्चों को डॉक्टरी पढ़ा सके, इसलिए उधार लेना ही पड़ा।
खैर अब आप किसी तरह की चिंता मत करो मम्मी, मेरी इंटर्नशिप हो गई है, भगवान ने चाहा तो जल्दी ही हमारे अच्छे दिन वापस आ जाएंगे।
भगवान करे ऐसा ही हो बेटा।
और इस दुर्गा मौसी को भी मैं सबक सिखाता हूँ।
अरे रहने दे बेटा, तू तो जानता है उसे, है तो वह धार्मिक प्रवृत्ति की लेकिन गरीब और जरूरतमंदों के लिए नहीं, बस केवल ढोंगी साधुओं और ठगों के लिए ही अपने रुपए खर्च करती है, वह भी केवल अपने मतलब के लिए। गरीब और जरूरतमंदों से उसे कुछ लेना देना नहीं है।
मम्मी अब उसे गरीब और जरूरतमंदों से भी लेना देना पड़ेगा।
तू ऐसा क्या करने जा रहा है?
ये मत पूछो मम्मी, बस आप देखते जाओ और पापा को भी समझा देना कि जैसा मैं कहूँ बस वैसा ही करते जाना।
ठीक है बेटा। दुर्गा दीदी आ रही है बेटा।
हम लोग तैयार हैं, तुम दुर्गा दीदी को लेकर आओ।
चलो अपन शुरू करते हैं। मम्मी शुरू हो जाओ।
ठीक है स्वामी जी, बिल्कुल ठीक है। तो मैं निश्चिंत रहूं कि मेरे डॉक्टरी बेटे के लिए जल्दी एक सुंदर सुशील और शालीन लड़की मिल जाएगी?
बिल्कुल देवी, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, तुम्हें बहू के रूप में अति शीघ्र एक साक्षात कन्या, साक्षात देवी के रूप में मिलेगी।
आओ दुर्गा दीदी आओ, ये बाबा पहुंचानंद है, ये कभी भी कहीं भी पहुंच जाते हैं, इसलिए बहुत पहुंचे हुए महाराज हैं।
प्रणाम महाराज प्रणाम, इस दीन दुखियारी पर भी दया करो महाराज, मुझे भी संकट से उबार लो बाबा।
तुझे क्या कष्ट है, निवेदन कर बालिका।
मेरे घर चलिए बाबा, इस भक्तिन को भी अपनी सेवा का अवसर दीजिए बाबा, वहाँ भोजन भी कीजिए, सारी बातें वही बताऊंगी बाबा आपको।
मूर्ख बालिका, सन्यासी जहाँ बैठ जाता है उसका घर हो जाता है, क्या ये घर नहीं है? बता तुझे क्या संकट है, तेरी क्या बड़ी विकट समस्या है?
बाबा मुझ पर तो संकट ही संकट है, आजकल मेरे ब्याज का धंधा भी बहुत कम चल रहा है, उधारी वाले मुंह छिपाते फिर रहे हैं और मेरी बेटी की शादी भी। कहीं अच्छी जगह पर तय हो जाए बाबा, बस इतना आशीर्वाद दीजिए।
मरीज एक और बीमारियां अनेक, अर्थात समस्याओं का पुलिंदा।
जी बाबा जी।
तो बालिका, इतनी समस्याओं को शांत करने के लिए अनुष्ठान करना होगा।
करिए महाराज, जरूर करिए, जितना भी खर्च होगा मैं दूंगी महाराज, मेरी तो साधु संतों पर अगाध श्रद्धा है, आस्था है महाराज मेरी।
तेरी ये चंचलता, तेरा ये उत्साह बताता है बालिका कि तेरी श्रद्धा महान है, तू अच्छी और सच्ची यजमान है बालिका।
भूलिए संकट मोचक महाराज, अनुष्ठान पर कितना खर्च आ जाएगा?
करीब 12-13 हजार रुपए खर्च बैठेगा बालिका।
हरीश बाबू, पैसे का इंतजाम हो गया क्या?
बस गिरीश लेकर आता ही होगा।
मगर हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते, हमारे प्रस्थान का समय हो चुका है।
ठीक है बाबा, ठीक है, अभी एक लेनदार से 10 हजार रुपए लेकर आई हूँ, आप वो रखो, 2-3 हजार में बाद में दे देती हूँ आपको।
ठीक है बालिका, बाद में 11 सन्यासियों को भोजन कपड़ा और दक्षिणा भी देनी होगी।
ठीक है महाराज, आपका आदेश सर माथे पर, ये लो 10 हजार रुपए लो।
अच्छा तो बाबा प्रस्थान करते हैं, सुखी रहो बच्चा, आनंद मनाओ।
दुर्गा दीदी बैठो ना, गिरीश रुपए लेकर आता ही होगा।
मगर मुझे तो ऐसे कोई आशा कहीं से दिखाई नहीं पड़ रही है।
अरे आप बैठो तो, वो आता ही होगा, आप अपना मूड क्यों बिगाड़ रही हैं? बाबा के आशीर्वाद से हम तो धन्य हो गए।
ये बाबा आपकी आती जाती तो है ना, क्योंकि इन्हें पहले कभी आपकी यहाँ नहीं देखा मैंने।
ये लो मम्मी, मेरी इंटर्नशिप का पैसा 15 हजार रुपए है।
वाह बेटा, आज तूने हमें एक मुश्किल से उबार लिया है। ये लो ये 4 बेटा, ये अलग रख लो। दीदी ये 11 हजार रुपए, डायरी लाओ।
लो डायरी लो। हाँ, अपने गिरीश बाबू के नाम के आगे साइन कर दो, आज से आपका खाता बंद, ठीक है ना?
ठीक है दुर्गा दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इतने काम जो आई हैं।
दुर्गा दीदी तो सबके ही काम आती है, आगे भी कभी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना।
और ये दुर्गा मौसी, आपके 10 हजार रुपए।
ये 10 हजार तुम मुझे क्यों दे रहे हो बेटा?
ये आप ही के वो 10 हजार रुपए हैं जो आपने बाबा को दिए थे, और वो बाबा मैं ही था।
बाबा तुम ही थे? हाँ दुर्गा दीदी, ये बताना चाहता था कि ढोंगी बाबा लोग किसी भक्त या श्रद्धालु को किस तरह से ठगते हैं।
इसीलिए दुर्गा दीदी, आइंदा आप देखभाल कर ही सच्चे लोगों पर श्रद्धा रखें,
और ना किसी पर अंधश्रद्धा ही रखें, और ना किसी पर अंधविश्वास करें।
वाह बेटा वाह, आपके परिवार खासकर इस लड़के ने तो मेरी आंखों के आगे से भ्रम का पर्दा हटा दिया है। मैं तो आए दिन ऐसे ठग और ऐसे बाबाओं पर अपनी संपत्ति लुटाती रहती थी, लेकिन आप जैसे ईमानदार और गरीब परिवार को सहायता देने में कितनी कठोर हो जाया करती थी, इसके लिए मुझे बहुत अफसोस है बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ।
अरे दुर्गा दीदी, इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है?
अगर आप लोग मुझे गलत ना समझे तो मैं एक बात कहना चाहूंगी।
हाँ हाँ जरूर कहो।
गिरीश ने मेरी बेटी राखी को तो देखा ही है, अगर उसे मेरी बेटी पसंद है तो मुझे इस परिवार से रिश्ता करके बहुत खुशी होगी।
मगर कहाँ आप और कहाँ हम।
मेरी आंखें खुल चुकी है आशा, मैं जान चुकी हूँ कि धन दौलत से ज्यादा महत्व और इज्जत आदमी की ईमानदारी और समझदारी की होती है। आप लोग अब ना मत कहना, क्यों बेटा गिरीश?
हाँ जैसा आप लोग तय करें।
सच की पहचान। अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी, इसके कलाकार थे पूजा केलकर, नलिनी गहलोत, दिनेश सोलंकी और माइकल होजेस। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।